Hi, Krishik. You had said that you wanted to talk to me about achievements of the Modi government.
Yes, so, sir. Yeah.
The reason that I've called you. Yeah, please come. Ask me what you wanted to ask.
Yeah, so sir, it has been 7 years of NDA government in India. We have seen that you have presented like great achievements and contributed a lot in the development of the country. So, but still there's a sense of a question mark in the public and in many states of the country that people are alleging that the BJP government is now going down and will have a great downfall in 2024. What's your opening remark about that?
You see, Krishik, we should try to analyze achievement of any government by two parameters. One, you take the entire 7 years as one perspective, you know, when you talk of incremental achievement, because certain policy decisions that were taken by the Modi government will definitely have incremental achievements, isn't it? You go on adding, as for example, Jan Dhan Yojana, many more accounts added, isn't it? So some schemes, yeah. Some addition will be there. And one is to go through what the government has achieved in the last 1 year, isn't it? I would say that, we should go by the last principle, that in the last 1 year, what new initiative you have taken, or how you have been able to, you know, tackle the crises that have come, or how you can rate the achievement. And that would be the best parameter. If you want to know that, then I have no doubts that the Modi government in the last 1 year has done tremendous job. And I'm sure that very few other leaders of the country, if they were in that post, they could have done as well in the last 1 year.
Yeah, for sure, sir. Sir, about the, basically, when we talk about the development of the country, we perceive the youth, then the employment that is being generated, and then we go up to the economy after the jobs or the employment we talk about. So, sir, I would like you to just tell that the employment opportunities that have been created during this term and the empowerment means how the government has empowered the youth as well.
You see, in the last 1 year, actually, you have to look at things with a different perspective. I'll tell you why. This was a period of crisis, isn't it?
We are dealing with pandemic.
The first wave of COVID-19, when it came, nobody knew actually in the entire world how to tackle with this crisis. And more so India, that cannot boast of its health infrastructure. And the best way that was available to the Prime Minister, he did that. The entire country was locked down for so many days, you know. And we gave food to 80 crore people absolutely free of cost for 8 months. This is a very, very big achievement. And you see the way the country was able to stand on its feet, and we were in a position to tackle this crisis, the whole world appreciated. And then we got the second wave, and no one expected it to be that severe. We were expecting a second wave, but everywhere the second wave has not been that intense. So the entire infrastructure seemed to be, you know, collapsing. The entire medical infrastructure was not ready to cope with that, you know, was not actually equipped to cope. And this is the observation of the Supreme Court, that in the last 70 years, the health infrastructure has not been that good. So how the Prime Minister, because Prime Minister is head of the country, and you know that there are state governments that take care of the health infrastructure also. So the problem is, if there's a crisis, he has to provide things. If you see how oxygen tankers were lifted from foreign countries using, you know, Indian Air Force and then in naval ships, you know, and the way the entire world came to rescue of India, it's a big achievement actually. But yes, when death happens, people get angry and they have a right to criticize. But we are very sure that, you know, once this crisis is over and people know the facts, the steps that were taken to tide with the crisis, then they will definitely appreciate. It's just a moment of crisis. So this 1.5 years should be seen in terms of what we did, in terms of what Modi government did in terms of saving lives, isn't it?
Yeah. So, sir, I agree to your point that you are saying that we have provided the best infrastructure that was present with the government or present in India. But, sir, there have been allegations, and I would not say only allegation, but criticism to the government during this past 3 months, not only a year, but during this past 3 months, that opposition parties even we have seen on social media that people are criticizing that the BJP government is only concerned about its PR, only the public relations they are maintaining, only the diplomatic relations they are maintaining with the foreign countries. What's the take on that?
Not really, Kushik. You see, because you can evaluate and you have objective parameters to do that. What steps the government did and what is the duty of the government at the center? I'm talking of that. Okay, when you're talking of BJP government, I mean that you're talking of Narendra Modi government at the center. And governments which are there in the state should be evaluated on different parameters, whether they have taken enough steps to, ameliorate the plight of suffering people. That should be the basis. You see, Modi government was sending missives to all the states that don't lower your guards. So remember the advertisements also coming on various television channels. Besides sending messages to states that you don't lower your guards, maintain the COVID protocol, social distance, do gaj ki duri, remember, mask hai jaruri. This is the thing we have been always stressing. But somehow, I cannot pinpoint, blame on any state government, because somehow it seeped into our character that we did not take COVID-19 that seriously. और जब आप ऐसा करेंगे खुद ही आपको लगेगा कि मतलब मार्केट प्लेस में सब लोग जा रहे हैं मास्क बिना पहने, उन्हें लगता है नहीं बस कोविड खत्म हो गया. आप देखिए सब लोग, अगर आप मुंबई सब अर्बन ट्रेन की बात करिए, मुंबई लोकल ट्रेन की बात करिए, इतनी भीड़ उसमें जा रही है, कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है. और स्लम्स की बात करिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस हुए थे अप्रैल का, आपको पता है, उसमें इसलिए मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ. दिल्ली में देखिए मार्केट प्लेसेस में, कुंभ मेला की भी आप बात कर सकते हैं कि वहां भी हुआ, प्रोटोकॉल दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से. लेकिन जो आजादी दिल्ली की सरकार को है या जो आजादी उत्तर प्रदेश की सरकार को है, जो आजादी कांग्रेस रूल स्टेट्स को है, महाराष्ट्र को है, वो आजादी बीजेपी रूल स्टेट्स को भी है. हम अपना काम मैसेज देके कर सकते हैं कि आप ये प्रिकॉशंस लो, और उनको दिया गया था. ठीक है, गलतियां सबसे हुई, तो पिन पॉइंट करने की जगह अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोग अगर सोचें, उस पर ध्यान दें. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्यों, जैसे दिल्ली में मैंने देखा, मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से दोस्त अब स्वर्ग सिधार गए. वो लोग अपने उनके गार्जियन लेके जा रहे थे, या वो अपने गार्जियन को लेके जा रहे थे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल. ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों सिंगल ऐप में नहीं आ गया सारा, बताइए. ये ऐप में आप डालिए आपके रिक्वायरमेंट को, जहाँ भी बेड खाली आप सीधे चले जाइए. हो सकता है ना, हम आईटी जायंट हैं, ये सिंपल स्टेप्स क्यों नहीं लिया गया? ये बहुत बड़ा ये सोचने की जरूरत है. और सिर्फ मोदी जी को ब्लेम करना है तो ब्लेम कर दीजिए, मोदी जी तो भगवान शंकर की तरह हैं, आप कभी इसको पिएंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे अमृत ही निकलना है, अगर सिर्फ ब्लेम देने की बात है. लेकिन हम लोग सुधर जाएं, हम लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, और भगवान न करे कि तीसरी वेव आए कोरोना की, उसके पहले अगर वैक्सीन लग जाए तो बहुत अच्छा होगा. हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसका.
जी सर. सर तो आने लाइक नाउ वी हैव 3 years लेफ्ट, 2024 में फिर से इलेक्शंस हैं सर, उस पे अभी तक की आई होप सो कि बीजेपी ने ऑब्वियसली प्लानिंग स्टार्ट कर दी होगी कि किस हिसाब से उन लोगों को स्टेट वाइज एंड देन नेशनल लेवल पे खड़े उतरना है.
देखिए, जो भी हमारे समर्थक हैं या हमारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो भी देश के लोग हैं जो देश को मजबूत बनाने का सोचते हैं और नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए. प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हम पूरा काम करेंगे, 4 साल 4.5 साल पूरे जम के काम करेंगे देश के उत्थान के लिए. चुनाव के समय हम लास्ट में सोचेंगे, जब 6 महीना रहेगा. तो अभी लोग इसको अगर जो भी हो रहा है उससे अगर आप 2024 के चुनाव को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो शायद आप न्याय नहीं कर पाएंगे. ये बहुत जरूरी है इस बात को जानना, अभी पूरे गति से काम करना चाहिए. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि करीबन 9000 ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे इस देश में जो चल रहे हैं, तो क्या उन सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाए क्योंकि हम कोविड से निपटने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना, देश तो आगे बढ़ता रहेगा. और मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि रोड कंस्ट्रक्शन में इस कोरोना के दरमियान सबसे ज्यादा गति से, तीव्र गति से आज तक रोड कंस्ट्रक्शन हुए. अगर रोड कंस्ट्रक्शन हुए तो किसने किया? मजदूरों ने किया, निश्चित ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन हुआ होगा. ये मैं कर रहा हूँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जिसका लोगों ने क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया. पार्लियामेंट बिल्डिंग जो नया बन रहा है, ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हुआ कि 75 साल जब भारत की आज़ादी का हो 2022 में, तो भारत के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में जाएं और लोगों को, खासकर युवाओं को, वो सपना साकार होते हुए दिखाएं कि देखो इस सपने के लिए भारत डेमोक्रेसी जो है आगे बढ़ी है. वो पार्लियामेंट बिल्डिंग नए आइडियोलॉजी को जो हम लोगों ने इतने सालों तक जिया है उसका प्रतीक होगा, और प्रतीक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर आप बात करिए डेमोक्रेसी के हिसाब से, तो भी आप ये सोचिए कि 2026 में जब परिसीलन होना है, ठीक है, जब नए कॉन्स्टिट्यूएंसीज और बनेंगे, तो हमारे पास हमारे लोगों को बैठाने का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके लिए भी जगह नहीं है इस पार्लियामेंट में। तो निश्चित ही जगह होने चाहिए, क्योंकि और कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनने चाहिए। आप देख लीजिए कि पहले क्या पॉपुलेशन था, आज डबल से भी ज्यादा हो गया है, तो क्या हम उतने ही पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें हमारे पार्लियामेंट, वो सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये सब चीजें हैं जिस पर सारे विपक्ष ने भी साथ दिया था, क्योंकि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बने ये कांग्रेस की भी सोच थी और सारे पार्टियों ने मिलकर इस पर मोहर लगाया था। तो अब राजनीति करने की क्या जरूरत है? अगर पार्लियामेंट बन रहा है मान लीजिए 860 करोड़ प्लस से, तो क्या उससे कोविड के ट्रीटमेंट को या फाइट को कोई धक्का लग रहा है? क्योंकि उसके लिए तो बजट ऑलरेडी ईयर मार्क्ड है। बजट तो हर चीज के लिए अलग अलग ईयर मार्क्ड होता है ना, इस चीज को समझने की आवश्यकता है और भारत आगे बढ़ता रहेगा।
तो सर जैसे कि आपने बताया कि एलोकेशन ऑलरेडी हुआ पड़ा है, वी हैव ऑलरेडी एलोकेटेड द फंड्स स्टेट वाइज भी, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी, हेल्थ को अलग, एजुकेशन को अलग, तो सर आपको नहीं लगता कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑपोजिशन यूज कर रही है उस चीज को?
बिल्कुल, देखिए पूरे सेंट्रल, आपको पता होगा, आपके दर्शक लोग काफी नॉलेजेबल हैं, ये 1,000 करोड़ से भी ज्यादा हर साल हम स्पेंड करते हैं रेंट देने में, क्योंकि वेरियस मिनिस्ट्रीज है, उनके पास ऑफिस नहीं है, उसको हम ऑफिस तो देंगे ना, मान लीजिए मंत्रालय है, तो कितना पैसा बचेगा आगे चलकर, इस पर सोचना चाहिए। रिपेयर में कितना पैसा खर्चा होता है, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, नए बिल्डिंग्स की आवश्यकता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, और आपके जो एम्बियंस है उसको भी खराब ना करें। ये तो भारत का एक जबरदस्त प्रतीक होने वाला है, भारत की सुंदरता, क्योंकि दिल्ली क्या है, दिल्ली तो भारत की राजधानी है ना, और राजधानी है तो भारत का प्रतीक है। अगर ये अच्छा हो रहा है तो ऐसे कौन लोग हैं? देखिए ये लोग जानते हैं कि मोदी जी ने जो किया है ये पहले कोई इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता था, और मोदी जी क्या अपने लिए कर रहे हैं? बताइए एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, अकेले रहते हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं क्या? इस बात को सोचने की जरूरत है। तो आपको पता है कि मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं, लोग मोदी जी पर आस्था रखते हैं, तो मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास करो, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सालों से ये प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी आगे बढ़ते रहेंगे और हम सब मोदी जी के साथ भारत को मजबूत बनाएंगे।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एट लास्ट आई वुड से कि आई थिंक सो वी हैव टू टेक दिस इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक वे। हम लोगों को सोचना चाहिए दैट इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक देश का बिल्ड हो रहा है, किसी भी तरीके से हो रहा है। तो
बिल्कुल, देखिए देश आगे बढ़ेगा, भारत को कोई रोक नहीं सकता। आज देखिए प्रत्येक युवा जो हैं अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं कि कुछ नया किया जाए, गवर्नमेंट से लोन लिया जाए, लोगों को नौकरी दिया जाए। ये जो ऊर्जा मैं युवाओं में देखता हूँ, ये पहले नहीं दिखता था, पहले बहुत लेट बैक एटीट्यूड था, सिर्फ सरकारी नौकरी कर लो बस हो गया और इंतजार करो कब रिटायर कर दो। ये जिंदगी नहीं हो सकती ना, भारत को आगे बढ़ाना है, और मोदी जी ने वो एनर्जी को अनलिश किया है, और खैर पूरा विश्व इसको झेल रहा है, कोविड-19 को, कोरोना को, और हम भी इससे सक्सेसफुली बाहर आ पाएंगे, और उसके बाद भारत तीव्र गति के साथ आगे बढ़ेगा और हम लोग इसको विटनेस करेंगे। हम लोग बहुत लकी हैं और शुक्रगुजार होना चाहिए प्रभु का, भगवान का, कि हमें ये मौका मिला है कि हम भारत को इतनी तेजी से तरक्की करता हुआ देखेंगे, और पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत अब वो वैसा देश नहीं है कोई भी भारत के खिलाफ कुछ भी बोले और चला जाए। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री की बात बोलें, क्योंकि चाइना तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी तरह नहीं है, वहाँ तो पार्टी डिक्टेटरशिप है, तो पूरे डेमोक्रेसी में हमारे जैसा कोई आबादी ही नहीं रखता। यूनाइटेड स्टेट्स जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो बहुत पहले डेमोक्रेसी वहाँ आई, उसकी जो आबादी है 33 करोड़ है, हमारी आबादी 2021 के अंत तक 140 करोड़ हो जाएगी। तो हम तो उससे चौगुना ज्यादा हैं, और इतने बड़े आबादी को हमने ऐसा टारगेट दिया है सरकार ने कि हम दिसंबर तक पूरा वैक्सीनेट कर देंगे। आप सोचिए किस स्केल में भारत काम कर रहा है, और पूरा विश्व भारत के साथ है, और आपके जैसे युवा ही भारत को आगे बढ़ाएंगे।
बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। इफ यू वांट टू गिव अ लास्ट क्लोजिंग रिमार्क और एनीथिंग,
नो आई वुड इनवाइट दैट। Thank you, because people tend to forget because we have short memory. So they need to be reminded that the ideals for which Mr. Narendra Modi ji was voted to power, those ideals stay, and he is working with that objective in mind. So we should not have any reason to doubt. We should not be confused by allegations or charges by the opposition parties, because they are trying for their political survival, and they have a right to do so. But we only expect that maybe they could have been more circumspect in their criticism, because they should know that they should give factual criticism and not just say anything which they want, because whatever they say goes against the interest of the country. You can oppose Modi ji, but please don't oppose the country. Thank you, Kushik. Thank you. Thanks a lot.
Thank you so much, sir. Thank you so much.